पेज नंबर 82। अभिमान ग्रस्त गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते हैं। अभिमानी स्वयं अंधा होकर दूसरों की आंखें भी फोड़ता है, न उसे दूसरों से उत्कृष्ट गुण की ओर ताकने का साहस होता है और न दूसरों को उसके गुण को स्वीकार करने की उत्कंठा होती। अभिमान दोनों ओर ज्ञान का निषेध करता है, अतः जिस प्रकार अभिमान न करना श्रेष्ठ गुण है, उसी प्रकार दूसरे के अभिमान को देख क्षुब्ध न होना भी श्रेष्ठ गुण है। अब यह स्पष्ट हो गया कि ईर्ष्या दूसरे की प्राप्ति की संभावना से उत्पन्न दुख है, चाहे वह वस्तु में प्राप्त हो या न हो। अतः ईर्ष्या धारण करने वालों के दो रूप होते हैं, एक असंपन्न और दूसरा संपन्न। असंपन्न रूप वह है जिसमें ईर्ष्या करने वाला दूसरों को ऐसी वस्तु प्राप्त करते देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे दुख में आलस्य या असामर्थ्य से उत्पन्न नैराश्य, दूसरों की प्राप्ति से अपनी सापेक्षित छुटाई का बोध, दूसरों की असंपन्नता की इच्छा और अंत में इस इच्छा की पूर्ति में बाधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का मीठा क्रोध, इतने भावों का मेल रहता है। किसी वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर सकते, दूसरा उसी को प्राप्त कर सकता है। हम समझते हैं कि लोगों की दृष्टि जब हमारी स्थिति पर पड़ती होगी, तब उसकी स्थिति पर भी पड़ती होगी। इससे लोगों की दृष्टि में हमारी स्थिति अवश्य कुछ न्यून जचती है। अतः स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न प्राप्त करता हो या खो देता, पर वह दूसरा व्यक्ति जीता जाता यत्नवान प्राणी होने के कारण उसे प्राप्त करता या रक्षित रखता है। इससे हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा होती है और हम बाधक के ऊपर मन ही मन चिड़चिड़ाते हैं। ईर्ष्या में क्रोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है, इसका प्रमाण बराबर मिलता रहता है। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु से संपन्न देख यदि कोई उससे ईर्ष्या करता है, जो केवल यही नहीं होता कि वह उसी वस्तु को उससे अलग करके या अलग करने का प्रयत्न करके संतोष कर ले, बल्कि वह उस संपन्न व्यक्ति को अवसर पाने पर बिना किसी अन्य कारण के कुवाक्य भी कह बैठता। जी दुखाने का यह प्रयत्न बिना किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता। इसी कारण जैसे क्रोध से जलना कहा जाता है, वैसे ही ईर्ष्या से जलना भी कहा जाता है। साहित्य के शब्दों में क्रोध ईर्ष्या के संचारी के रूप में समय समय पर व्यक्त होता हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पर लगे हाथों तो यह भी देख लेना चाहिए कि यह क्रोध है किस प्रकार का। यह क्रोध बिल्कुल जड़ क्रोध है, जिसके प्रति ऐसा क्रोध किया जाता है, उसके मानसिक उद्देश्य की ओर नहीं ध्यान दिया जाता। यदि हम असावधानी से दौड़ते समय किसी सोए आदमी से टकरा कर उस पर बिगड़ने लगें या रास्ते में पत्थर की ठोकर खाकर उसे चूर चूर करने पर उतारू हों, तो हमारा यह क्रोध जड़ क्रोध, क्योंकि हमने यह विचार नहीं किया कि क्या वह आदमी हमें ठोकर खाने के लिए ही सोया था, या वह पत्थर हमारे पैर में लगने के लिए ही नामाकुल इरादे से वहां आ पड़ा। यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है और दूसरा उसे प्राप्त करता है, तो वह उस उद्देश्य से नहीं प्राप्त करता कि उससे हम अपनी हेठी समझकर दुखी हों और हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा पड़े। ये दूसरी बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी कि उसकी प्राप्ति से हम अपनी हेठी समझकर बेचैन हो रहे हैं, वह हमारे दुख में सहानुभूति न करे और उस वस्तु के लिए आनंद से कान में तेल डाले बैठा रहे। प्रायः तो ऐसा होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को पहले यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी प्राप्ति से किन-किन महाशयों की मानहानि हो रही है। ऊपर कहा जा चुका है ईर्ष्या धारण करने वालों की दो दशाएं, असंपन्न और संपन्न। असंपन्न दशा का दिग्दर्शन तो ऊपर हो चुका। संपन्न दशा वह दशा है जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसे दूसरों को भी प्राप्त करते देख हमें दुख। असंपन्नता में दूसरे को अपने से बढ़कर होते देख दुख होता है। असंपन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से बढ़कर रहें, उसके बराबर ना रहें। संपन्न की ईर्ष्या में आकांक्षा बड़ी चढ़ी होती, हम दूसरे से बढ़कर, इससे उसका अनौचित्य भी बढ़कर होता है। असंपन्न ईर्ष्या वाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचाने के लिए आकुल रहता है, पर संपन्न ईर्ष्या वाला दूसरे को नीचा समझते रहने के लिए व्याकुल रहता है। असंपन्न की ईर्ष्या में नैराश्य का भाव और अपनी कमी का दुख मिला रहता है, इससे उसकी कलुषता उतनी गहरी नहीं जान पड़ती। निराश और अभाव पीड़ित मनुष्य जैसे इधर उधर
फूलता भटकता फिरता है, वैसे ही ईर्ष्या की राह में भी जा पड़ता है। पर संपन्न ईर्ष्यालु की स्थिति ऐसी क्षोभ कारिणी नहीं होती। हमारा कोई साथी है जो किसी वस्तु में हमसे कम है, उसकी कमी और अपनी बड़ाई देख दिखाकर हर घड़ी प्रसन्न होने का हमें दुर्व्यसन हो गया है। इसी बीच उसको भी यह वस्तु प्राप्त हो जाती है और हमें जान पड़ता है कि हमारी स्थिति जो सापेक्ष थी, हमारी अपने आनंद में इस प्रकार बाधा पड़ते देख हम अपने साथी की उस प्राप्ति से दुखी होते हैं और मन ही मन उस पर कुढ़ते भी हैं। साथी को बहुत दिनों तक तो इसका पता ही नहीं चलता, पीछे पता चलने पर भी वह हमारे इस दुख में कुछ भी सहानुभूति नहीं करता। हमारी कुप्रवृत्ति का कारण बिना अवसर के हर घड़ी बड़ाई का अनुभव व स्थिति की सापेक्षिकता का सुख भोगने की लत है। किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य और सापेक्षिकता पर गौर दृष्टि रखनी चाहिए। सापेक्षिकता नजर का खेल है और कुछ नहीं। यदि हमें पेट भरा नहीं मिलता, पर लोग समझते हैं कि हम अपने किसी साथी से अच्छे या धनी हैं, तो लोगों की इस धारणा से हमारा पेट नहीं भर सकता। लोगों की इस धारणा से आनंद होता है, पर वह उस आनंद का सतांश भी नहीं जो वास्तविक स्थिति में प्राप्त वस्तुओं से मिलता है। अतः स्थिति के वास्तविक आनंदों को छोड़ इस छाया रूपी आनंद पर मुख्य रूप से ध्यान रखना प्रमाद और स्थिति की रक्षा का बाधक है। यदि हम वास्तविक दशा की ओर ध्यान रखकर आवश्यक प्रयत्न न करते रहेंगे तो अपनी संभाल नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की धारणा का कुछ मूल्य होता है, अर्थात उसे कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। जैसे यदि किसी गांव में मूर्ख और विद्वान दो वैद्य हैं, तो लोग दूसरे को अधिक निपुण समझ उसके पास अधिक जाएंगे और उसकी आमदनी अधिक। अब यदि पहला वैद्य भी परिश्रम करके वैद्यक पढ़ लेगा और लोगों की धारणा हो जाएगी कि यह भी विद्वान है, तो दूसरे वैद्य की आमदनी कम हो जाएगी। ऐसी अवस्था में उस दूसरे वैद्य का पहले वैद्य की उन्नति से कुड़ना शुद्ध ईर्ष्या नहीं, हानि का दुख या झुंझलाहट है। ईर्ष्या निस्वार्थ होनी चाहिए। ईर्ष्या का दुख प्रायः निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्ष्या होती है, वह ऐसी बात होती है जिस पर हमारा वश नहीं चलता। जब हम में अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं, तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्तन कर सकते हैं? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है, उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं। किसी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंग प्रत्यंग का परिचय अवश्य होता है, पर कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जिनमें ईर्ष्या की तुष्टि का साधन सुगम होता है। जैसे यदि किसी आदमी को किसी दूसरे से कुछ लाभ पहुंचने वाला होता है या पहुंचता होता है, तो हम उस दूसरे से उसकी कुछ बुराई कराते हैं और उसे उस लाभ से वंचित कर देते हैं। पर हमारी यह सफलता निरापद नहीं। यदि वंचित व्यक्ति को हमारी कार्यवाही का पता लग गया, तो वह क्रुद्ध होकर हमारी हानि करने के लिए अधिक वेग से यत्न करेगा। हमने तो केवल जरा सा जाकर जवान हिलाने का कष्ट भर उठाया, पर वह हमारी हानि करने के लिए पूरा परिश्रम करेगा। ईर्ष्या में प्रत्यत्नोपादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के हेतु प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक अपने मन में नहीं ला सकते, तभी हम हार कर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रख सापेक्षिकता द्वारा संतोष लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं तो और क्या है? जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है, उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष कर सकते हैं? जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है, उसे ना तो नैराश्य होता है और ना हर घड़ी दूसरे की स्थिति के मिलान करते रहने की। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो, उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना। जिससे ईर्ष्या की जाती है, उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है, यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते। दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग हम उस पर क्रोध करते हैं जिसमें अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या एक ऐसी बुराई है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपनी अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को अपराधी की स्थिति से अच्छी दिखलाना न्याय का काम है। ईर्ष्या अत्यंत लज्जावती वृत्ति, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती। उसके रूप आदि का पूरा परिचय न पाकर भी धारणकर्ता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है। यह कभी प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आती। उसका कोई बाहरी लक्षण धारणकर्ता पर नहीं दिखाई पड़ता। क्रोध में आंखें लाल हों, भय में आकुलता हो, घृणा में नाक भौं सिकुड़े, करुणा में आंसू आए, पर ईर्ष्या में शायद ही कभी असावधानी से ठंडी सांस निकल जाए। ईर्ष्या इतनी कुत्सित वृत्ति है कि सभा समाज में, मित्र मंडली में, परिवार में, एकांत कोठरी में कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती। लोग अपना क्रोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते हैं, घृणा स्वीकार करते हैं, लोभ स्वीकार करते हैं, पर ईर्ष्या का नाम कभी मुंह पर नहीं लाते। ईर्ष्या से उत्पन्न अपने कार्यों को दूसरी मनोवृत्तियों के सिर मारते हैं। यदि हमें ईर्ष्या के कारण किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही तो हम बड़ी गंभीरता और सज्जनता प्रकट करते हुए उसके दोषों और त्रुटियों का निदर्शन करते हैं। बैर ऐसी बुरी वृत्ति तक कभी कभी ईर्ष्या को छिपाने का काम दे जाती है।